प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें। मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
आइए श्रोता, इसी गीत के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु से सामर्थ मांगें, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप हमारी सहायता करने की कृपा करें। हमारे मध्य में होने वाली सारी बाधाओं को प्रभु आप दूर करें, ताकि हम शांति और आनंद के साथ आपके वचन पर ध्यान कर सकें। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से बहुत पीड़ित है, किसी समस्या में उलझा है, निराश है, प्रभु आप उसकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम पुराने नियम से दूसरे राजाओं की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 22वें और 23वें अध्याय को देखेंगे। 22वें अध्याय का मुख्य विषय है यहूदा के राजा योशिया का अच्छा शासनकाल। योशिया ने 8 वर्ष की आयु में शासन का उत्तरदायित्व संभाला था और उसने 31 वर्ष तक राज्य किया। सुलेमान राजा के पश्चात राज्य करने वाले राजाओं में योशिया अच्छे राजाओं में से एक राजा था। उसके समय में एक महान जागृति आई और जिसकी राष्ट्र को बड़ी आवश्यकता थी। उसकी माता का नाम यदीदा था। उसके सलाहकार हिलकिया महायाजक थे। सो आइए इसी परिचय के साथ हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देखें दूसरा राजा, उसका 22वां अध्याय 1 से 7 पद। इन 1 से 7 पदों में हम देखेंगे कि योशिया का जीवन एक आदर्श जीवन था। योशिया इतनी कम आयु में राजा क्यों बना? वो इसलिए राजा बना क्योंकि उसके पापा जी की हत्या कर दी गई थी। अनेक बालकों को इसी कारण से उत्तरदायित्व को संभालना होता है। सो हम योशिया के जीवन में भी इस कार्य को देख रहे हैं। इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि यहूदा में पुनः सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया। मनुष्य के अंधकार के दिन दूर हुए हैं। प्रजा ने आमोन राजा को हटा दिया क्योंकि उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अब योशिया यहूदा का नया राजा है और इसके आते ही प्रजा में जागृति आ गई है। मित्रवर, आज हम कलीसिया में भी जागृति देखने की लालसा करते हैं। सो हमें सर्वप्रथम तो इस बात को समझना है कि आत्मिक जागृति एक व्यक्तिगत अनुभव है। मैं ऐसा विचार नहीं कर सकता कि जागृति सीधे ही जनता में आ जाती है। कोई भी आंदोलन सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से जन्म लेता है और तत्पश्चात ये जनता का विषय बन जाता है। आज हमें आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम एक दूसरे की आलोचना करते रहें। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे अगुवे इस बात को स्वीकार कर लें कि मुझे परमेश्वर के साथ उचित और ठीक संबंध रखने हैं। योशिया नामक इस महान व्यक्ति ने केवल यही कार्य किया। उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में भला व उचित था और इसी के साथ वहां आत्मिक जागृति आरंभ हो गई। सर्वप्रथम परमेश्वर के भवन की मरम्मत उसने आरंभ की। योशिया ने प्रथम कार्य यह किया कि वह अपने पूर्वज दाऊद के मार्ग पर चला। दूसरा कार्य यह कि उसने यहोवा के भवन की मरम्मत कराई। और वास्तव में जिस समय योशिया सिंहासन पर बैठा उस समय यह भवन किसी भी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था। संभवतः यह किसी स्टोर अर्थात सामान रखने के गोदाम के रूप में प्रयोग हो रहा था। और आज भी ऐसे अनेक आराधनालय हैं जो इस कार्य के लिए प्रयोग हो रहे हैं। 5वें और 6वें पद में वो लोगों से कहता है कि वह सब मंदिर की मरम्मत में जुट जाएं। मित्रवर, कलीसिया अर्थात चर्च भी दाऊद के समय के परमेश्वर के भवन के समान है। इसे भी आज मरम्मत की आवश्यकता है। मेरा संकेत ईंट और गारे की ओर नहीं है। मेरा संकेत है आपके व्यक्तिगत जीवनों की ओर। आज कलीसिया बाहर अपनी साक्षी देने से लजाती है क्योंकि कलीसिया की स्थिति ठीक नहीं है। उसे सुधार की आवश्यकता है। उसे मरम्मत की आवश्यकता है। तब हम अग्रिम पदों में देखेंगे कि उनको मंदिर में व्यवस्था की पुस्तक मिल जाती है। जब वो मंदिर की सफाई कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, उस समय उन्हें व्यवस्था की पुस्तक प्राप्त होती है। मेरे मित्र, देश में जागृति लाने में सहायक होता है जो तीसरा तथ्य है, वो परमेश्वर का वचन है। प्रजा का परमेश्वर के वचन की ओर फिरना ये जागृति का कारण है। मेरे मित्र, वे परमेश्वर के वचन को खो चुके थे। वे चर्च में खो गए थे। वे आराधनालय में फंस गए थे। वे परमेश्वर के वचन को भूल चुके थे, परंतु उन्हें परमेश्वर का वचन पुनः प्राप्त हो गया। उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को खोज लिया। उन्होंने पुनः उसे अपने जीवनों में बसा लिया। प्रिय मित्र, केवल परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे लिए एक अस्त्र के समान है। इब्रानियों की पत्री का लेखक 4वें अध्याय के 12वें पद में बताता है कि यह परमेश्वर का वचन है जो जीवित और शक्तिशाली है और दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। मेरे मित्र, हमें किसी छोटे मार्ग की आवश्यकता नहीं, कोई सरल मार्ग नहीं, जागृति की किसी नए ढंग की आवश्यकता नहीं, हमें आवश्यकता है परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वचन की और उसके ओर फिरने की और उसे अपने मन में बसाने की। और इस प्रकार पवित्र बाइबल की ओर वापस लौटना एक बड़ी आत्मिक जागृति का आरंभ है। 9वें और 10वें पदों में हम देखते हैं कि योशिया राजा प्रथम बार परमेश्वर का वचन सुन रहा है। यहाँ लिखा है, तब शापान मंत्री राजा के पास लौट आया और राजा के लिए ये संदेश लाया, जो धन यहोवा के भवन में मिला उसे तेरे सेवकों ने खाली करके उस कारीगर को सौंप दिया है जो यहोवा के भवन में काम की देखरेख करते हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को बताया, हिल्किय्याह महायाजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसे राजा के सामने पढ़ा और ऐसा हुआ कि जब राजा ने व्यवस्था की पुस्तक के वचन सुने, उसने अपने वस्त्र फाड़े। मेरे मित्र, यहां पर हम देखते हैं कि जागृति के मार्ग पर यह चौथा सोपान है, पश्चाताप। राजा ने पश्चाताप किया, उसने वचन सुना, पश्चाताप किया। परमेश्वर के वचन का पढ़ाया जाना और सुना जाना पश्चाताप का कारण बना। और जब राजा ने परमेश्वर के सत्य वचन को सुना, उसने अपने वस्त्रों को फाड़ डाला, वह अत्यधिक भावुक हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने उसके पाप को उस पर प्रकट किया। बिना परमेश्वर के वचन के वे ये नहीं जान सकते कि वे परमेश्वर से कितने दूर चले गए, वे परमेश्वर के विरोधी हो गए। मेरे मित्र, जब तक सच्चा पश्चाताप नहीं, जागृति भी संभव नहीं। और पश्चाताप तब आता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के समीप आएंगे, तब वास्तव में हृदय टूटेंगे, वस्त्र फाड़े जाएंगे, अर्थात हृदय तोड़े जाएंगे और महान आत्मिक जागृति आएगी। तब 12 और 13 पदों में हम देखते हैं कि योशिय्याह परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में अपना और प्रजा का चेहरा देखता है। वो भयभीत है क्योंकि वह जानता है कि हम दंड के योग्य हैं। तब 15 से 17 पदों में हम देखते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक अर्थात पवित्र बाइबल का मिलना। परमेश्वर ने जो संदेश अपने नबियों के द्वारा और अपनी नबिया हुल्दा के द्वारा भेजा, वह परमेश्वर के न्याय तथा दंड दोनों को प्रकट करता है, जैसा कि हम यहां पढ़ते हैं। 15वें पद को देखें, वह उनसे बोली, अर्थात हुल्दा नबिया, जिसके विषय में हम 14वें पद में पढ़ते हैं, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, उससे कहो कि यहोवा ये कहता है, देख, इस पुस्तक के सब वचनों के अनुसार जो इसराइल के राजा ने पढ़ा है, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूं। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तथा अन्य देवताओं के सामने धूप जलाया है और अपने हाथ के सब कार्यों से मेरा क्रोध भड़काया है। इसलिए मेरा क्रोध इस स्थान के विरुद्ध भड़का हुआ है और शांत ना होगा। इस प्रकार हुल्दा नबिया द्वारा परमेश्वर ने अपने न्याय और दंड को उन पर प्रकट किया। 18 से 20 पदों में हम देखेंगे कि योशिय्याह पर परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार से होता है। हम यहां एक पश्चातापी हृदय के महत्व को देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि टूटा मन परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य बलिदान है। यहोवा टूटे मन के समीप रहता है। सो आइए हम यहां पर ध्यान ले जाते हैं पश्चाताप के महत्व पर। एक मनुष्य को पश्चाताप का क्या लाभ हो सकता है? सबसे पहली बात, उसकी प्रार्थना सुनी गई। हमने देखा कि जब योशिय्याह ने पश्चाताप किया तो उसकी प्रार्थना सुनी गई। दूसरी बात, पूर्वजों के साथ वो मिल गया। हमें बताया गया है कि वह इसलिए, सुन, मैं तुझे तेरे पूर्वजों में मिला दूंगा, ये उसके लिए आशीष बनी, जैसा कि 20वें पद में हम पढ़ते हैं। तब तीसरी बात है, कब्र में शांति से पहुंचेगा, तू कब्र में शांति से पहुंचेगा। चौथी बात है, विपत्तियां अपनी आंखों से ना देखेगा, जो विपत्तियां मैं इस स्थान पर डालूंगा तुझे अपने नेत्रों से उन्हें देखना ना पड़ेगा। मेरे मित्र, योशिय्याह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने पश्चाताप किया और इसलिए उस पर अनुग्रह हुआ। आज भी परमेश्वर का यही नियम है, विश्वास, फिर पश्चाताप तथा अनुग्रह, और जिसका परिणाम उद्धार है। इस प्रकार से 22वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। हम 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 23वें अध्याय के 1 से 7 पदों में हम देखते हैं कि राजा और प्रजा दोनों ने परमेश्वर से वाचा बांधी कि हम न केवल परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे वरन उसके अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा है। तब राजा के द्वारा यहूदा और यरूशलेम के सब प्राचीन बुलवाकर एकत्र किए गए। तब राजा यहोवा के भवन को गया, उसके साथ यहूदा के सब लोग, यरूशलेम के सब निवासी, याजक, नबी और छोटे बड़े सब लोग थे। और वाचा की जो पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसने उसकी सब बातों को पढ़कर सुनाई। तब राजा ने स्तंभ के समीप खड़े होकर यहोवा से वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा तथा अपने सारे मन और प्राण से उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों का पालन करूंगा और वाचा की इस पुस्तक में लिखी बातें पूरी करूंगा। तब समस्त प्रजा ने भी इसी आश्रय की वाचा बांधी। मित्रवर, बिना पापों को माने बिना पश्चाताप के आत्मिक जागृति संभव नहीं है और ये कार्य केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हो सकता है। जब वचन सुनाया जाता है तब पवित्र आत्मा सुनने वालों के हृदय में कार्य करना आरंभ करता है। वो परमेश्वर के वचन को वास्तविक बनाता है, उनके हृदय छिद जाते हैं और तब मन कायल होते हैं, निरुत्तर होते हैं और लोग पाप से पश्चाताप करते हैं। ये जागृति का प्रारंभ है। जागृति का अनुसरण आंदोलन करता है और अनेक सुधारात्मक कार्य होते हैं। पश्चाताप का अर्थ है प्रभु के साथ अपना लेखा ठीक कर लेना। पश्चाताप का अर्थ है पीछे घूम जाना, मुड़ जाना, पूर्णतः दिशा परिवर्तन कर लेना। यदि आप गलत मार्ग पर जा रहे थे, आपको घूमकर सही मार्ग को पकड़ लेना है। यही वास्तविक पश्चाताप है। स्मरण रहे, बिना पश्चाताप के जागृति संभव नहीं। और यहां हम देखते हैं कि राजा तथा प्रजा दोनों ने परमेश्वर का वचन सुनकर अपने पाप को स्वीकार किया और पश्चाताप किया और तब जागृति आई। 22वें अध्याय में हम देखते हैं कि योशिय्याह एक महान प्रभावशाली व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। उसके पश्चाताप ने उसे पहला कदम उठाने को उत्साहित किया और हम देखें कि सर्वप्रथम वो प्रतिमा पूजा को जीवित परमेश्वर के भवन से अलग करता है। योशिय्याह का पहला कदम ये था कि उसने प्रतिमा पूजा को परमेश्वर के भवन से दूर किया, क्योंकि आहाज और मनश्शे ने परमेश्वर यहोवा के भवन में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित कर दिया था। योशिय्याह उसे समाप्त करता है। 4वें पद के अनुसार वो सारी वस्तुएं जिनका संबंध काल्पनिक व झूठे देवताओं की उपासना से था, उन्हें सबको वो नष्ट करता है और सबको नगर के बाहर ले जाकर फूंक देता है। वह राख को वहां से ले गए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग राख पर भी दृष्टि डाल सकें और उनका मन पराये देवताओं की ओर दोबारा से फिर जाए। जैसे कि 6वें पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने अशेरा को यहोवा के भवन से निकाला और यरूशलेम के बाहर किद्रोन के नाले पर लाकर वहां उसे फूंक दिया और उसे पीस कर धूल कर दिया और साधारण लोगों की कब्रों पर उसे बिखेर दिया। फिर 7वें पद में हम पढ़ते हैं, फिर उसने पुरुषगामियों के निवास पे जो यहोवा के भवन में थे, जहां स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थीं, ढा दिए। तब योशिय्याह ने अनैतिकता को भी समाप्त किया। आज अनेक स्थानीय कलीसियाएं, विशेषकर विदेशों में, इस प्रयास में लगे हुए हैं कि समलिंग कामुकता को मान्यता प्राप्त हो जाए। परंतु मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री के प्रथम अध्याय के 26 और 27 पदों में बताता है कि उसने, अर्थात परमेश्वर ने, ऐसे लोगों को त्याग दिया है। दूसरे शब्दों में, समलिंग कामुकता परमेश्वर द्वारा त्यागे हुओं का लक्षण है। ये परमेश्वरहीन व्यक्ति का लक्षण है। परमेश्वर ऐसे देशों को त्याग देंगे, ऐसे लोगों को त्याग देंगे। योशिय्याह ने साहस किया और पुरुषगामियों का बहिष्कार किया। उसने न केवल उनके घृणित कार्य की आलोचना की, वरन उसने उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने कहा कि पुरुष गमन मेरा क्रोध भड़काता है। परमेश्वर ने अपने स्वभाव को नहीं बदला है। आज भी परमेश्वर का स्वभाव वैसा ही है। उन्होंने प्राचीन काल में पुरुष गमन को सहन नहीं किया, वो आज भी सहन नहीं करते, वे भविष्य में भी सहन नहीं करेंगे। सदोम और अमोरा के विनाश का कारण भी यही था। मनुष्य असामाजिक बातों को सामाजिकता का चोगा पहनाना चाहता है। मनुष्य का स्वभाव, रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन और ये सारे ढंग बदलते रहते हैं, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलते। योशिया परमेश्वर भक्त व साहसी व्यक्ति था। उसने अपने देशवासियों को समलिंग कामुकता से छुटकारा दिलाया। तब अगली बात हम देखते हैं जो 8 से 10 पदों में पाई जाती है। तब उसने नर बलि पर रोक लगाई। वे अपने बच्चों को मोलेक नामक देवता के आगे बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर को इससे घृणा है। योशिया ने अपने लोगों को इस बड़े घृणित कार्य से बचाया। तब 23वें अध्याय के 10वें पद में हम देखते हैं कि योशिया ने उन समस्त प्रतिमाओं को, वेदियों को, ऊंचे स्थानों को नष्ट कर दिया जिन्हें उससे पूर्व के राजाओं ने स्थापित किया था। वो यहूदा की सीमा से बाहर भी निकल गया। उसने बेतेल तक सुधार किया। दूसरा इतिहास उसका 34वां अध्याय 33वां पद हमको बताता है कि योशिया ने इसराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर किया और जितने लोग इसराइल में थे उन सब से परमेश्वर यहोवा की उपासना करवाई। उन्होंने उसके जीवन भर अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। मित्रवर, योशिया ने परमेश्वर के वचन को सुना, सत्य को जाना, उस पर विश्वास किया, स्वयं को जांचा, पश्चाताप किया, उसके जीवन में जागृति आई और इसका प्रभाव प्रजा पर पड़ा। आज मेरे मित्र, कलीसिया की और समाज की उन्नति के लिए अगुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। उन्हें अपने पापों पर दृष्टि करने की आवश्यकता है। उन्हें स्वयं को जांचने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, तभी वास्तविक जागृति आ सकती है और बहुत से सुधारात्मक कार्य हो सकते हैं। तब 11 से 24 पदों में हम योशिया द्वारा धर्म सुधार कार्यों के विषय में पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, और जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के प्रवेश द्वार पर नतन मेलेक नामक अधिकारी के निवास के बाहरी कक्ष में रखे थे, उन्हें हटा दिया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। वे वेदियां जो छत पर आहाज के ऊपरी कक्ष में थीं, जिन्हें यहूदा के राजाओं ने बनवाई थीं, तथा वे वेदियां जो मनुष्य ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनवाई थीं, उन्हें राजा ने ढा दिया और चूर चूर करके उनकी धूल किद्रोन के नाले में फेंक दी। और इस प्रकार के अनेक कार्य योशिया राजा ने किए। 14वें पद में हम पढ़ते हैं, उसने पवित्र लाटों को चूर चार कर दिया, अशेरा को काट डाला और उसके स्थान को मनुष्यों की हड्डियों से भर दिया। इसके अतिरिक्त जो वेदी और ऊंचे स्थान नाबात के पुत्र यारोबाम तथा जिसने इसराइल से पाप करवाया था बेतेल में बनवाए थे, उस वेदी और ऊंचे स्थान को भी उसने तोड़ डाला। तब उसने पत्थरों को चूर चूर कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। और 19वें पद में हम पढ़ते हैं, और योशिया ने सामरिया के नगरों के ऊंचे स्थानों के भवनों को भी हटा दिया जिन्हें इसराइल के राजाओं ने बनवाकर यहोवा का क्रोध भड़काया था। उसने उनसे भी वैसा ही किया जैसा बेतेल में किया था, और ऊंचे स्थानों के सब याजकों को उसने वेदियों पर घात कराया और मनुष्यों की हड्डियां उन पर जलाई। तब वह यरूशलेम को लौट आया। प्रिय मित्र, हमने देखा कि किस प्रकार से योशिया राजा के समय में प्रजा में आत्मिक जागृति आई। उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया और उस पाप को अपने मध्य से दूर किया। उन्होंने 3 विशेष कार्य किए। उन्होंने प्रतिमा पूजा को परमेश्वर के मंदिर से दूर किया, उन्होंने अनैतिकता को देश से दूर किया, और पराये देवताओं के सामने बच्चों के बलिदान करने के घृणित अभ्यास को समाप्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने और क्या क्या किया, हम अगले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में इन सारी बातों पर ध्यान करेंगे। आज हम यहीं रुक जाते हैं। अगले कार्यक्रम में इस विषय को लेकर पुनः आपसे भेंट करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन। हैं।
कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद श्रोता। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्य वचन विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।